यकीन मानो बेटा, मेरे और फरामन साहिबा के ताल्लुकात में कोई भी बुरा इरादा मौजूद नहीं है।
ठीक है, तो कम से कम मेरी गलत फहमी खत्म करने के लिए उसे कल ही नौकरी से निकाल दें।
अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम उसे क्या मांग रही हो? यासमन, तुम कहती हो कि उन चोलखोरियों और बकवास बातों की वजह से मैं एक इंसान, एक फैमिली की रोजी रोटी काट दूं?
अच्छा तो उसको इस साल 2 साल के बराबर तनख्वाह दे दें और चलता करें, इस तरह आपको फिक्र और परेशानी भी नहीं रहेगी, यानी इन 2 सालों में अपने लिए कोई काम नहीं ढूंढ पाएगी।
अच्छा मैं उसे क्या कहूँ कि किस बात में तुम्हें निकाल लाऊं?
प्लीज डैडी, मेरे लिए, इस जिंदगी के खातिर।
बस करो यासमन, जो चीज तुम मुझसे मांग रही हो वो गैर अखलाकी है, मैं उसे मान नहीं सकता।
आपको फरहम ना उसके बेरोजगार होने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ अपने लिए। हेलो।
सलाम मेरी बेटी।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
कैसी हो बेटा? हेलो यासमन,
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
तुम्हारा गला क्यों फंसा हुआ है, रोई हो क्या?
नहीं मम्मी, मैं क्यों रोऊंगी, जरा नजला हो गया था।
अपना ख्याल क्यों नहीं रखती बेटा, तुम मुझे यहाँ पर भी परेशान करती रहोगी।
ओह जरा सा नजला जुकाम है मम्मी। बेनियामिन क्या कर रहा है?
वो भी ठीक है, तुम्हें याद करता रहता है।
मम्मी आप डैडी का हाल क्यों नहीं पूछती? कई दिनों से कह रहे थे कि घर का खाना खाने को जी चाह रहा है। मैंने रात को कुरमा सब्जी बनाया था, मिलकर खाया।
नोशीजान,
आते ही कहने लगे कि मम्मी और बेनियामिन के बर्तन भी लगा दो, आप लोगों को बहुत याद कर रहे थे। ज्यादा खाना भी नहीं खाया, लग रहा था कि आपके बगैर मजा नहीं आया।
शायद तुम्हारी कोरमे सब्जी अच्छी नहीं बनी होगी।
यही तो कह रहे थे कि कोई भी तुम्हारी मम्मी की तरह कोरमा सब्जी नहीं बना सकता, लेकिन उनको बिल्कुल भूख नहीं थी, वो बहुत चाहते थे कि आप वापस आ जाएं।
उनके लिए कोरमे सब्जी बनाने आऊं है?
कोरमा सब्जी तो एक बहाना है मम्मी, हर बात पर आपको याद करके दुखी हो जाते हैं।
अगर मुझे चाहते थे तो हत्ता 1 साल भी यहाँ क्यों नहीं रुक सके?
क्योंकि ना आपको छोड़ सकते थे ना अपने मुल्क को, कसम से आपने उनको बुरे इम्तिहान में डाल दिया है।
छोड़ो यासमन, बेटा तुम कब लौटोगी?
काश आप यहाँ आ जाती।
दोबारा शुरू ना करो यासमन, कसम से मुझे इन बातों का कोई हौसला नहीं है।
मैं तो जानती हूँ आप भी वहाँ से उकता गई हैं। प्लीज मम्मी, जिद्दबाजियाँ छोड़ दें, उठ के यहाँ आ जाएं।
मैं जिद्दी हूँ या वो कि एक फोन भी नहीं करते?
कसम से उनका मर्दाना गुरूर आड़े आता है, वरना हर रोज उनकी बातों, उनकी निगाहों से जानते हूँ कि उनका दिल आपके पास है। दूसरा ये कि कभी आपने उन्हें फोन किया है क्या? वो भी आपकी तरह है, सोचते हैं आपको उनके बिल्कुल फिक्र नहीं। मम्मी कसम से आप एक कदम आगे आएंगी तो वो 10 कदम आगे बढ़ेंगे, तब आप समझ जाएंगी कि गलती पर हैं।
भाभी जान आइए सहन में जरा हवा खा के आते हैं।
डॉक्टर साहबा आपके लिए चाय लाया हूँ।
शुक्रिया।
जहमत ना हो तो चचा के लिए ले जाइए। शुक्रिया।
ठीक।
सुरैया से नहीं पूछा?
कौन सी बात?
ये कि क्यों हमें पहले नहीं बताया? हम उसे रोकते, जल्दी बताया होता तो।
असल में भूभी जान, मैं भूभी से जब मिला था उस वक्त हमें चचा नहीं मिले थे, नहीं जानता था कि वो नशा करते। लेकिन सुसन चची कह रही थी कि सुरैया भूभी जानती थी कि हमीद नशा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको पैसा देती थी।
क्यों?
नहीं मालूम।
सुसन ने और क्या बताया?
भूभी जान खुदा के वास्ते इन बातों को छोड़िए, इस वक्त अहम ये है कि हम हमीद चचा का जल्द से जल्द इलाज करवाएं।
मेहंदी, या वो तमाम बातें जो सुसन ने बताई हैं अलिफ से ये तक बताओगे, या मैं खुद जाके सुसन से पूछती हूँ।
लैला
जी। ओह, इतनी सारी सब्जियां।
बेटा वो बड़ा वाला चाकू लेकर ना, मैं भूल गई थी लेके आना।
जी।
लैला,
एक इंसान कैसे इतना खुदगर्ज और शुतुरकीन हो सकता है?
भूभी जान, इस वक्त हमें सिर्फ हमीद चचा की मदद के बारे में सोचना चाहिए, सुरैया भूभी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको कोई ऐसी जगह मालूम है जिस पर हम भरोसा कर सकें और हमीद चचा को इलाज के लिए एडमिट कर सकें? भूभी, मैंने सुना है कि बाज़ रिहैब सेंटर नशा तर्क करवाने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि एडिक्ट अफराद के साथ वहाँ बदसलूकी की जाती है। आपको कोई काबिल इत्मीनान जगह मालूम है जहाँ चचा को एडमिट कर सकें? भाभी जान,
मिल जाएगी, पूछना पड़ेगा।
उठिए उठिए, चलते हैं, जरा चचा के साथ बात करते हैं। आप तो वहां बैठकर सिर्फ रो रही थी भाभी जान, इस वक्त चचा जान को तसल्ली और हौसला देने की जरूरत है। चलिए उनके साथ बात करते हैं।
बेटा, मैं इस वक्त चाहती हूँ कि जरा अकेला रहूं।
लेकिन लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता।
प्लीज मुझे सर अपने साथ रहना रहने दो।
ठीक है, लेकिन कसम से सोचने और फिक्रमंद होने से कुछ हल नहीं होगा।
वाह वाह, डॉक्टर साहिबा यहाँ आई हैं। यहाँ कहाँ और तुम कहाँ? आइए आइए डॉक्टर साहिबा, इतने अरसे के बाद याद आया कि कोई तुम्हारी फूफी भी है, लेकिन सलाम करना क्यों भूल गई? मजहब सिर्फ नमाज रोजों में नहीं होता, सिला रहम भी मजहब का हिस्सा है। क्या हुआ? मैं समझी तुम्हें बुरा लग गया, वापस चली गई। बाप कैसा है तुम्हारा? लगता है वो तो भूल ही गया है कि उसकी एक बहन भी है। लेकिन तुम क्या, तुम तो मेरी गोद में बड़ी हुई थी, तुम क्यों भूल गई हैं? क्या ढूंढ रही हो इधर उधर? क्या हुआ है? इतने साल बाद एक एक करके सब यहां आ रहे हो, क्या हुआ जो इस बूढ़ी की याद आ रही है?
मुझे अपने भाई की याद आई है, छोटे भाई की।
मैंने उस लड़के से कहा था कि मैं हमीद के बारे में कुछ नहीं जानती।
हाँ, इस पर यकीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर जानती तो जमीर चैन से न रहने देता।
हाँ, तो मुझे समझाने आई हो, यहाँ अदालत खड़ी करने आई हो?
आई हूँ आपको हमीद का हाल बताने, आपके भतीजे का, जिसे आपने अपने भाई से अलग किया। ये बताने आई हूँ कि अपने भाई से आपका कीना नफरत रंग लाई है फूफी जान। खुश हो जाए, हमीद को तबाह बर्बाद कर दिया आपने।
मैंने क्यों बर्बाद किया? वो खुद बर्बाद हुआ।
लेकिन तभी का पैसा आप देती थी उसको अपने पास रखने के लिए, उसे नशे के लिए पैसा देती रही, ताकि अपनी जिंदगी को तुम्हारे सामने आग लगाए। क्यों फूफी जान, क्यों किया आपने ऐसा?
हाँ जानती हूँ कि ये बकवास तुम्हें किसने बताई? सुसन ने। लेकिन अपने कान खूब खोल के सुन लो, मैंने हमीद को नेमतुल्लाह से अलग किया। हाँ मैंने ये काम किया, लेकिन उसकी एक वजह थी, मैंने उसे अपने बाप से जुदा किया, क्योंकि वो अपने बेटे का हक खा रहा था, क्योंकि अपने बच्चे पर जुल्म कर रहा था, क्योंकि अपने बच्चे का हक किसी और के हल्क में डाल रहा था। हमीद को इस घर में बहुत मोहब्बत मिली है। हाँ मैं उसे पैसा देती थी क्योंकि उससे मोहब्बत करती थी।
ये वही रीच की दोस्ती की मिसदाक है।
जब मुझे पता चला कि नशा कर रहा है तो उसे मना किया, इसीलिए मेरे घर से चला गया।
वो यहाँ से चला गया क्योंकि जान गया था कि आपके कमरे में आपने आग खुद लगाई थी और मेहदी को कसूरवार ठहराया था। वो यहाँ से चला गया क्योंकि तुम्हारे नफरत भरे दिल को पहचान गया था। वो यहाँ से गया क्योंकि आपसे नफरत करता था, वरना आपको सारी उम्र उसके लिए नशा फराम करने के पैसे देने के लिए तैयार थी, ताकि आपके पास रहे।
अपना मुंह बंद करो।
जब मसूद यहाँ से लौटा तो मुझसे वादा लिया कि कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आज हमीद को देखने के बाद मैं खुद को ना रोक सकी। इतने साल बाद उस शख्स के साथ किए वादे को पामाल कर दिया, जिसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, और यहाँ आई आपको ये बताने कि हम सब आपसे नफरत करते हैं।
जहन्नुम में जाओ।
आइए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम इंजीनियर साहब।
फरमान साहिबा कहाँ हैं?
नहीं जानती, अभी तक नहीं आई है।
ये रिपोर्ट आज रात तक टाइप हो जाना चाहिए, मुझे इसे एक घंटे तक वापस देना होगा।
दे दे, मैं कर लेती हूँ।
माफ कीजिए, शर्मिंदा कर रही हैं।
कोई बात नहीं, कोई और काम तो नहीं है?
बहुत शुक्रिया आपका।
कोई बात नहीं।
आपकी चाय यहाँ रख दूँ?
जी
फराहमान कहाँ है?
फराहमान साहेबा।
जी हाँ, माफ कीजिएगा, 10 बज गए अभी तक आए नहीं।
आपसे क्या मतलब?
वो कहती हैं कि आपको इंजीनियर ना कहूं और आप कहती हैं उन्हें मैं फरहमन साहिबा कहूं। नहीं, मेरा मतलब है कि इंसान इंसान में कितना फर्क होता है।
रूज में जाओ, अपना काम करो, इतनी लगाई बुझाई मत करो।
जी अच्छा।
जी
अस्सलाम वालेकुम मैडम ताहिरी।
वालेकुम अस्सलाम यासमन जान, ठीक हो?
नहीं, कैसे ठीक हो सकती हूँ?
क्यों, क्या हुआ है?
कुछ नहीं, रात को उस लड़की की वजह से डैडी से झगड़ा हो गया।
मैंने कहा था ना कि कुछ जाहिर नहीं करो।
अरे इस बात पर कि मैंने क्यों उस लड़की से सख लहजे में बात की, मुझे डांटा।
उनके ताल्लुक के मशकूक होने के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना?
क्यों नहीं?
गलती की।
मैं खुद को रोक ही ना सकी। तसव्वुर करें, मुझसे कह रहे थे कि कल जाके उससे माफी मांगूं।
अच्छा,
तो और क्या, मैंने जो दिल में चाहा सारा कह दिया।
मांग गया है?
नहीं, कह रहे थे कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं।
तो ये तो बहुत अच्छा है।
आप यकीन करती हैं?
फराहमन साहिबा के बारे में नहीं, लेकिन तुम्हारे अबू के बारे में हाँ, क्योंकि मुमकिन है उनकी नजरें पाक हों।
लेकिन मैडम ताहिरी, जब मैंने उसे कहा कि कल उसको निकाल दें, शिद्दत से मुखालिफत की, कहा नहीं ये काम नहीं करूँगा।
शायद बाद में पशीमान हो गए हों और ये काम कर चुके हों।
ऐसा क्यों कह रही हैं?
क्योंकि फराहमन आज काम पर नहीं आई है।
सच कह रही है?
हाँ, और किसी को बताया भी नहीं है।
हाय खुदा का शुक्र, इंशाल्लाह कब कभी भी ना आए।
इतने अरसे के बाद ये बड़ी जहमत की है। इस आदमी को जैसे पता ही नहीं है कि मैं मुद्दई हूं।
आदमी नहीं को फरहाद भाई, ये दानिश्वर केस इन्वेस्टिगेटर है, उसके पास जाकर सही से बोलना।
इन्वेस्टिगेटर हो या जो भी हो, इतने अरसे के बाद मेरे लिए एक समन भेजा है और तुम कह रहे हो कि मैं उसके साथ सही तरीके से बात करूं? जनाब मैं मुश्किल में हूं, ये पैसा आज मेरे काम का है, कल मेरे काम नहीं आएगा।
भाई फरहाद, ध्यान से वहां जाके बदमाशी मत करना, वो केस इन्वेस्टिगेटर है, तुम्हारा मुलाजिम नहीं।
फरहमन के लिए भी समन भेजा गया होगा ना?
देखो फरहाद भाई, तरीके कार ये है कि इन्वेस्टिगेटर पहले दावेदार से बात करता है ताकि उसे केस समझे, फिर तुमसे बात करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा, कायल हुआ तो फरहमन को भी कोर्ट में बुला लेगा। इसमें मुश्किल क्या जो नहीं समझ पा रहे हो तुम?
और अगर कायल नहीं हुआ तो?
कायल नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, कहेगा कि तुम्हारा दावा दुरुस्त नहीं है और कानून के फला फला शिक के मुताबिक तुम्हारी शिकायत सही नहीं है।
ओहो, तुमने तो कहा था कि दावा दायर कर सकता हूँ, ऐसे में तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा।
इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसके साथ ठीक से बात करना, पूरी कहानी उसी तरह बताना जैसे मुझसे बताया है, बगैर किसी गुस्सा किए, बगैर झिझक के आराम से बात करना, वो जानता क्या करना चाहिए। और इस वक्त जल्दी जाओ, परेशान मत हो। तो जाते क्यों नहीं? इस पर लिखा है 10 बजे पहुंचना है, देर हो जाएगी।
तो चलो।
मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे एक और काम करना है।
ऐसे कैसे होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
उस मीटिंग में मेरे आने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान ना हो।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मैं आज वापस नहीं आऊंगा, कोई काम हो तो मोबाइल मिला लेना।
जी ठीक है।
कहाँ होना चाहिए, काम पर हूँ, अपना काम कर रहा हूँ।
वालेकुम सलाम।
तुम्हारा बास नहीं है?
नहीं जी, किस लिए दोबारा यहाँ उठ के आ गए हो?
ये औरत तुम्हारी दोस्त बिल्कुल पागल है।
तुम्हें क्यों ताजुब हो रहा है? तुम्हें तो बेहतर मालूम होना चाहिए कि बास लोग हमेशा पागल होते हैं।
ओह, जब तुम जानती ही थी तो मुझे किस लिए उसके पास काम करने के लिए भेजा?
असलान साहब जाओ, दोबारा क्यों मेरा दिमाग खराब करने आए हो?
नहीं, मुझे तुम्हारे दिमाग से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि अपना काम छोड़ चुका हूँ, ये काम मेरे लायक नहीं है।
अच्छा किया, इंसान को जिस काम का शौक नहीं होता वो तो उसको करना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छा किया छोड़कर। फरमाइए, सलाम, कैसी हैं आप? जी यहाँ हैं जी, इसने खुद मुझे बता दिया। नहीं खैर मैडम, इत्तेफाक से ये ज़्यादा बेहतर है, कसम से मुझे भी सुकून आ गया। आपके सामने बहुत शर्मिंदा थी। क्या मतलब? नहीं खैर मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर मैडम, मैं आपको थोड़े वक्त में खुद फ़ोन करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़।
क्या कह रही थी?
क्या कहना चाहिए?
जो भी कहती है झूठ कहती है। उसे पहले दिन से मैं अच्छा नहीं लगता था, मजबूरी में मुझे रखा था, बहाने ढूंढ रही थी मुझे निकालने का।
चलो खैरी मैडम झूठ बोल रही है, क्या कस्टमर भी झूठ बोलेगा?
वो भी उसी का आदमी है, उसने कहा कि आगे इस तरह से गवाही दे। देखो अगर उसे पैसे भेजने थे तो मैडम खैरी बताए क्यों नहीं? क्या कानून नहीं है कि किसी के लिए कोरियर से रकम भेजनी हो तो लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है कि उसमें पैसा है?
असलान साहब, जो तुम कह रहे हो वो सब ठीक है, ये सबके लिए अच्छा हुआ, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, खैरी मैडम के लिए। चलो जाओ यहाँ से। अब
तुम्हारे पास कब आएगा?
तुम्हें से क्या काम है, जाओ अपना काम करो।
यहाँ बैठता हूँ, आके मुझे देखेगा तो खुद समझ जाएगा।
नहीं है, आज बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसे देखना है तो जाओ कल आना।
अपने दूसरी बीवी के पास गया है?
मुझे क्या मालूम कहाँ गया है, जाओ कल आके खुद उससे पूछ लेना कि कहाँ था।
बार बार कह रहा हूँ, आओ जरा उसकी गोशमाली करते हैं, शायद इस मामले में हमारे हाथ भी कुछ लग जाए।
तुम्हारे हाथ क्या लगेगा, वो उसके तलाक याफ्ता बहन के घर जाता है। इसकी बीवी से कहना चाहते हो कि वो छिप कर अपनी बहन के घर जाता है, यही कहना चाहते हो तुम? हाँ यही कहोगे?
अपनी बहन के घर?
हाँ अपनी बहन के घर। तुम्हारे ख्याल में अपनी बहन के घर जाना हैरानी की बात है?
तो इस दफा क्यों नहीं बताया?
किस लिए बता दिया इस्लान साहब, तुमसे क्या ताल्लुक है, मुझसे क्या ताल्लुक है? तुम कुरियर मैन काम करते हो या लोगों की जिंदगी में जासूसी करते फिरते हो?
तुम्हें वरगलाया है, धोखा दिया है तुम्हें। लिफाफे पर फानी नहीं लिखा था, औरत का नाम कुछ और था। एक मिनट सोचने दो, भी याद आ जाएगा।
उठो उठो, उसकी बहन तलाक याफ्ता, वो अपने शौहर के नाम पे वहाँ जिंदगी कर रही है, जाओ।
तुम्हें यकीन है?
नहीं यकीन नहीं है, उठो जाओ, मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ।
अगर ऐसा है तो इस दफा क्यों नहीं बताया?
अभी जो बता रही हूँ ना वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम खैरी मैडम के पास काम नहीं करते हो, वरना कभी नहीं बताती लोगों की जिंदगी का राज। किस लिए बताऊँ, खुद मैडम खैरी जानती है कि वो उसके बहन का घर है। चाहो तो खैरी मैडम से खुद जाके पूछ लो, पूछो कि क्यों मुझे नहीं बताया, उनसे पूछो कि उन्होंने क्यों नहीं बताया कि वो फानी साहब के बहन का घर है, ताकि मेरा जहन खराब ना हो और मैं मुफ्त के मंसूबे ना बनाऊं। हैं? उठो उठो जाओ, अपना काम करो, और अगर फानी साहब से पूछना चाहते हो तो कल आके पूछो कि कल कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं बता दूंगी कि ये खैरी मैडम के यहाँ मुलाजिम है जिसको चोरी की वजह से बाहर निकाल दिया गया है।
शाबाश मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया। تمہارے تو ایک دوست دار یا دوست ہوں تو انسان اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
میں تمہاری دوست نہیں ہوں اسلان صاحب، رشتہ دار بھی نہیں ہوں۔ اگر تمہارے لیے کچھ کری ہو صرف اپنی بہن اور اس کے بےچارے بچوں کے لیے کر رہی ہوں۔
اچھا کس نے بلا وجہ غصہ ہو رہی ہو؟
اور بھاگو، اس سے زیادہ غصہ مت دلاؤ مجھے، یہاں سے نکلو ابھی اسی وقت۔
لیکن
سلام خیری میڈم، معاف کیجیے گا، یہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی۔ لفافے میں کتنی رقم تھی؟ ہائے میں مر جاؤں، سچ کہہ رہی ہے۔
آپ نے اتنا بڑا سودا کیسے ایک ہاتھ سے لکھے ہوئے کنٹریکٹ کے ذریعے کیا؟
جی، اس لیے کہ اس وقت میرے پاس پراپرٹی ڈیلر اور رجسٹرار آفس جانے کی رقم نہیں تھی۔ دونوں پارٹیوں نے طے کیا کہ تمام رقم کی ادائیگی سے پہلے رجسٹرار آفس نہیں جائیں گے۔ میں قرضے چیک پر لے رہا تھا، میرے وکیل نے تو آپ کو بتایا ہوگا۔
کیا انہوں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ وہ یہ ورکشاپ کسی اور کو بھی بیچ رہے ہیں؟
نہیں، اگر مجھے علم ہوتا تو میں اتنی دیر صبر نہ کرتا، ورکشاپ جا کے سیدھے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ مجھے اس وقت پتا چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔
اس فرحمن صاحب کا آپ کے ساتھ رقم کے لینے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا؟
پہلا چیک ٹائم پر کیش کرا کے اپنے قرضے وغیرہ چکا دیے، دوسرے چیک کو بلا وجہ باؤنس کرایا۔ میں بیرون ملک سفر پر گیا تھا، اپنے آفس کے افراد کو بتانا بھول گیا تھا کہ اکاؤنٹ میں رقم ڈال دیں۔ یہ صاحب دوسرے چیک کو بینک لے گئے، دیکھا اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے، میرے آنے تک نہیں رکے، چیک کو باؤنس کر دیا۔
تو اس کا مطلب ہے دوسرا چیک کیش نہیں ہوا؟
کیش نہیں ہوا کیونکہ میں ایران میں نہیں تھا۔ ضرور آپ کے ساتھ بھی پیش آیا ہوگا کہ موقع پر اکاؤنٹ میں رقم ڈالنا بھول گیا ہوں۔
میرے پاس چیک بک نہیں ہے فانی صاحب۔
جی، بہرحال بازار کے معاملات میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آدمی بینک جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اکاؤنٹ خالی ہے، فون کر کے کہتا ہے کہ جناب کا اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے، کیا کروں؟
آپ کو کب خبر ملی کہ آپ کا چیک باؤنسڈ ہو گیا ہے؟
اسی دن جس دن چیک باؤنسڈ ہو گیا، فرحمان میرے آفس میں گیا، ملازمین کے سامنے خوب شور مچایا۔ میری سیکرٹری نے فائنینس مینیجر کو فون کیا، نیری صاحب نے آ کے اس کو کافی وضاحت دی کہ فانی نہیں ہے، سفر پر گئے ہیں، اس کے لوٹنے تک صبر کرنا پڑے گا۔ جج صاحب، میں اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں، اس نے چیک کو باؤنس ڈی سے لے کیا تھا کہ اسے ایک بہانہ مل جائے اور پھر وہ ورکشاپ کو کسی اور کے ہاتھ بیچ دے۔
آپ کو فون پر کیوں اطلاع نہیں دی گئی کہ اکاؤنٹ میں رقم ڈال دے؟
مجھے گاہے بگاہے مال کو کسٹم سے نکالنے اور دوسرے تجارتی کاموں کے سلسلے میں دبئی جانا پڑتا ہے، وہاں پر کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فون نہیں لے جاتا، ضروری مواقع پر خود ہی فون کرتا ہوں۔
جب آپ سفر سے واپس آ گئے تو اس کے چیک کو کیش کرایا؟
جب نیری صاحب نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا ہے تو میں نے فرمان صاحب کو فون کیا کہ آفس آ جائیں تاکہ مسئلہ حل کر دیں۔ میں نے ان سے التجا کی کہ مجھے ایک یا دو دن کی مہلت دیں تاکہ میں اکاؤنٹس کو چیک کروں، اس میں رقم ڈال دوں تاکہ ان کا چیک کیش ہو جائے۔ جب وہ آفس سے واپس جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مان گئے ہوں، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے۔ وہ چیک کے کیش نہ ہونے کو بہانہ بنا کر یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کا چیک باؤنسڈ ہو گیا ہے، اس لیے میں ورکشاپ کسی اور کو بھیج سکتا ہوں۔
کس نے آپ کو خبر دی کہ ورکشاپ بک گیا ہے؟
خود انہوں نے فون کر کے بتایا، وہ مجھ سے رقم لینے سے پہلے سر سے پاؤں تک قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، مجھ سے رقم لے کے اپنے قرضے چکائے۔ کیا میری ادائیگی میں ایک دو دن کی تاخیر سے ان کو اجازت مل سکتی ہے کہ میری ملکیت کو کسی اور کو بیچ دیں؟
نہیں، ان کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کو بتا دیا ہو اور آپ کو راضی کر چکا ہو۔
نہ راضی کیا ہے نہ اجازت لیے۔
اچھا، تو اس نے تمہیں فون کر کے کیا کہا؟
انہوں نے فون کر کے کہا کہ میں نے جگہ بیچ دی ہے، تمہاری رقم لوٹانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، یہ کیا، یہ بینک ہے کہ جب تمہارا جی چاہے رقم نکالو، جب چاہے واپس کر دو؟ ارے قرض الحسنہ کا بھی اپنا ایک قانون ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے آپ نے انہیں کہا کہ پراپرٹی نہیں بیچنا چاہتے؟ اور اب وہ تمہاری طرف سے دعویٰ دائر ہونے کا منتظر ہے۔
بالکل، آپ شک نہ کیجیے، میں اسے کہہ چکا ہوں کہ دعویٰ دائر کروں گا۔
اچھا پھر؟
وہ میرے آفس میں آیا، دلائل دینے لگا کہ جناب میں بہت مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بھی اس سے کہا کہ میرے لیے یہ باتیں اہم نہیں ہیں، مجھے اپنی پراپرٹی چاہیے۔
تو کیا آپ نے ان سے اپنی رقم واپس نہیں لی؟
جی نہیں، میں نے رقم نہیں لی، میں نے اس سے کہا کہ میرے آفس سے نکل جاؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن پھر مجھے فون کر کے کہا کہ رقم میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔
200 ملین تومن آپ کے اکاؤنٹ میں آئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا؟
جج صاحب، میری کمپنی کا کیش فلو بہت ہائی ہے، جس وقت انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں رقم ڈالی اسی وقت میں نے کسی کو چیک دیا تھا جس کو 2-3 دن بعد کیش کرانا تھا، لیکن اس نے ٹائم سے پہلے ہی کیش کرا لیا۔
آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ اب بھی آپ کو وہ پراپرٹی چاہیے۔
کیا پراپرٹی مجھے واپس مل سکتی ہے؟ تو جس نے میرے بعد خریدی ہے اس کا کیا ہوگا؟
اس طرح کے کیسوں میں عدالت دوسرے معاملے کے فسخ ہونے کا حکم جاری کرتی ہے، البتہ آپ کو بھی پراپرٹی کی تمام رقم ادا کرنی ہوگی۔ یہاں پر صرف فرامن صاحب پھنسیں گے۔ فرامن صاحب اس وقت دوسروں کے مال کو بیچنے کا ملزم ہے، اس جرم کی سزا جیل بھی ہے اور دوسرے گاہک کے تاوان کو بھی بھرنا پڑے گا۔
میں نہیں چاہتا کہ جس آدمی نے وہ جگہ خریدی ہے اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو۔ بہرحال اس نے بھی ایک امید کے تحت وہ جگہ خریدی ہے۔
تو آپ کو اب وہ جگہ نہیں چاہیے؟
نہیں، جس پراپرٹی میں ایسے لفڑے ہوں اس میں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صرف اس فرامند کی تھوڑی گوش مالی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے سبق ملے کہ دوسروں کے پیسے پر اپنا کاروبار نہ چمکائے۔ مجھے اس رقم کا تاوان چاہیے جو اس مدت میں اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں ایک تاجر ہوں، اس عرصے میں اس پیسے سے بہت کام کر سکتا تھا۔ معلوم ہے میں کتنا کما سکتا تھا اس سے؟ کم سے کم 2 برابر تو کما ہی سکتا تھا۔
تو ٹھیک ہے پھر۔
جج صاحب،
میں جج نہیں ہوں فانی صاحب، انویسٹیگیٹر ہوں۔
میں بہت مصیبت میں ہوں، یہ کیس مزید کتنے عرصے چلے گا؟
ہر کام کا اپنا ایک دورانیہ ہوتا ہے، ہمیں فرامن صاحب سے بھی بات کرنا ہوگی۔
ایسے تو نہیں ہو سکتا، مجھے دعویٰ دائر کیے 1 مہینہ گزر چکا ہے، لگتا ہے انہیں ابھی خبر بھی نہیں دی گئی کہ ان کے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے۔
فی الحال ہمیں آپ کے ساتھ اور کوئی کام نہیں۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
میں نے سچ میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے کبھی نہیں بولوں گی۔
قسم سے میرا قصور نہیں تھا، امی کہہ رہی تھی کہ اگر تم اپنے گھر میں رہو گی تو جلدی صلح ہو جائے گی تمہارے گھر والوں کے ساتھ، اور کہہ رہی تھی کہ اگر میں ثالثی کراؤں گی تو تمہارے اپنے گھر کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، ورنہ میرے گھر ہزار آتے رہو۔
بیتا جان، تمہارے علاوہ تو میری کوئی سہیلی بھی نہیں ہے۔
اچھا، آپ زیادہ نخرے نہ دکھاؤ۔
واہ، السلام علیکم، کیسے ہو سیاوش؟
وعلیکم السلام، تم کیسے ہو، ٹھیک ہو؟
خبریں تو تمہارے پاس ہیں، نظر نہیں آ رہے، یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے آخر؟
ارے بس تھوڑا مصروف ہوں، یہ 2 ٹرم ختم ہو جائیں تو فارغ ہو جاؤں گا۔
اور ہاں سیاوش، یہ جو لڑکا ہے نا محمد رضا، کچھ کہہ رہا تھا، دوستوں نے تمہیں نہیں بتایا؟
نہیں، کیا کہہ رہا تھا؟
کہہ رہا تھا کہ تم مہران فرامند کے ساتھ مل کے بینک کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے تھے، فرامند کے بھائی کاغذات کی فوٹو کاپی کے ذریعے لون لینا چاہتے تھے۔ سچ کہہ رہا ہے؟
یہ محمد رضا نے کہا ہے؟
ہاں، کہتا ہے کہ بینک کی سیکیورٹی کو پتا چل گیا، تم دونوں کی بات عدالت اور جیل تک پہنچ گئی ہے۔
کس سے کہا ہے؟
سب کو، ابھی کیفیٹیریا میں سب کو اکٹھا کیا تھا اور یہی بکواس کر رہا تھا۔
سو دفعہ اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہ کہو کہ تمہاری بے عزتی کروں۔
نہیں، یہ بری بات ہے یار۔
ارے کون سا بیچارہ، اس دفعہ کلاس میں بھی اسی طرح کی ایک بات کی اور استاد نے اسے خوب ڈانٹ لگائی۔ دیکھو پچھلے ہفتے ہی کلاس کی بات کا دوسروں کو پتہ نہ چلے،
پریشان
ہو
رہا
دوسرے کو پتہ نہ چلے۔
ارے کیا،
علیکم السلام، اسکول نہیں جاتا تھا، جب جاتا تھا تو جمعے کا دن ہوتا تھا۔
معاف کیجئے، پہلے تو آج جمعہ نہیں، جمعرات ہے۔
بہرحال تم کہاں ہو لڑکی، تمام ٹیچرز تمہارا پوچھ رہے ہیں، کہیں امتحانات میں مشکل نہ پیش آئے۔
سچ، تم میری فکر نہ کرو، مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، میں نے بورڈ سے بات کی ہوئی ہے۔
ہم نے بتا دیا، چلتی ہوں میں۔
فضول لڑکی،
کیا سچ مچ بورڈ کو علم ہے؟
ہاں ہاں، لیٹر لیا ہوا ہے۔
کس سے؟
اسی ڈاکٹر سے جس نے میری شکل کا یہ حشر کیا ہوا ہے۔
تو تم کیوں آج یونیورسٹی آنے پر اصرار کر رہی تھی؟ آج تو بورڈ بالکل بند ہے۔
جانتی ہوں، پر آج گھر میں رہنے کا موڈ نہیں تھا مجھے۔
کیوں؟
کیونکہ یار وہ میرے گھر میں کافی کام ہو رہا تھا، تو اس لیے۔ شبنم، یہاں کیا ہو رہا ہے؟
نہیں معلوم۔
छोड़ो मुझे, जलील करूंगा इसको, कमबख्त को।
छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या करता है,
क्या कर रहे हो?
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ।
बस करो, चलो
छोड़ो, क्या करता है, छोड़ो।
नहीं नहीं, बस करो बस करो,
सबक सिखाता उसको। मेरी नाक तोड़ दिया, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा।
सियावश तुम क्या कर रहे हो, आखिर हुआ क्या, बताओ।
तुम खुद को स्टूडेंट कहते हो, ये मैदानी जंग है जो आके यहाँ लड़ रहे हो।
ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम अपने किए पे पछताओगे, बता रहा हूँ मैं, देख लेना। तुम नहीं जानते कि ये कैसा इंसान है।
कौन है, कौन है? ताकि पता चले इन लोग को भी। झूठ बोला था मैंने, क्या झूठ बोला था मैंने? तुमने फरामद को बेवकूफ बनाया और उसे दस जाली दस्तखत लिए और बैंक के साथ फ्रॉड करके दूसरे इंसान के साथ लोन लिया, ये सब झूठ है। इस वक्त तुम जमानत पर रहा हो, ये सब झूठ है। किस किस से अपनी करतूत छुपाओगे? हैं, बहुत जल्द तुम जेल जाने वाले हो, सजा भुगतोगे।
बेगैरत गद्दार, छोड़िए, बताता हूँ तुम्हें।
क्या हो गया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
क्यों लड़ रहे हो? हटो पीछे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेहया जलील इंसान, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है।